ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, नवाचार और विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक यशस्वी तुर्लापटी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी, ये है IPHE और इसकी 41वीं संचालन समिति की जो बैठक है वो नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च के बीच हो रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन पर पूरी दुनिया में इस समय चर्चा है, भारत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। आज हम बात करेंगे क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, क्या है इसका भविष्य और क्यों पूरी दुनिया तारीफ कर रही है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा विश्लेषक यशस्वी तुर्लापटी जी हैं। यशस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
धन्यवाद जी।
तो शुरू करते हैं, ये ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा बहुत हो रही है, जहाँ तक एक आम आदमी समझ पाता है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है तो वो यही समझता है कि शायद ये एक ऐसा फ्यूल है जिससे बहुत कम कॉस्ट पे गाड़ियां हम चला सकेंगे, साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। लेकिन आप हमें समझाएं कि दरअसल क्या है ग्रीन हाइड्रोजन और इसके बारे में क्या कुछ काम चल रहा है।
हाइड्रोजन एक एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। हम लोग इन जनरल यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, उसका कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एक किलो ओ फ्यूल बर्न करने से कितना एनर्जी मिलता है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है इसलिए वो हम यूज करते हैं। ये ग्रीन हाइड्रोजन का बात जो है, हाइड्रोजन जो कि हमको पीरियोडिक टेबल में मिलता है उसका भी कैलोरीफिक वैल्यू फॉसिल फ्यूल के आसपास नहीं है, लेकिन इसको प्रोडक्शन मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज जैसे अवेलेबल नहीं है, हमको इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी ना किसी से हमको सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग अगर कोयला को जला के उसमें से हाइड्रोजन सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग नेचुरल गैस यूज करते हैं। नेचुरल गैस में क्या है, CH4 विच मीथेन। तो ये जो हाइड्रोजन का चार एटम्स है, ये चार एटम्स को हम एक रिएक्शन है स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन, वो रिएक्शन के थ्रू हम लोग स्टीम में नेचुरल गैस को रिलीज करेंगे तो ये हाइड्रोजन सेपरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फाइट किया जाए तो ये हाइड्रोजन ऐसा भी प्रोड्यूस किया। तो हाइड्रोजन हम लोग तीन चार तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एक तरीका है ऐसा फॉसिल फ्यूल यूज करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना। ये फॉसिल फ्यूल यूज करके प्रोड्यूस करने वाला हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। वातावरण में जो कुछ भी चेंजेस दिख रहे हैं इसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हमको फॉसिल फ्यूल यूसेज को कम करना, तो हाइड्रोजन के तरफ जा सकते हैं। बट हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी अभी मैंने जैसा बताया उसमें भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं। अभी अगर फॉसिल फ्यूल ना यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। वो कैसे करते हैं, पानी H2O है उसमें, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, वो H2 को सेपरेट करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब सोलर पावर, विंड पावर, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके वो हाइड्रोजन एटम्स को जब सेपरेट करेंगे वो उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि हम इस प्रोसेस में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करते हैं।
कुल मिलाकर अगर इसको और थोड़ी सी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें यशस्वी जी, तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल बिजली है जैसा कि आप बता रहे थे, इसका इस्तेमाल करके पानी को विभाजित करना पड़ेगा और इससे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन जैसा आपने बताया एक स्वच्छ ईंधन है, पूरी तरीके से साफ है और इसमें कार्बन का उत्सर्जन जो है वो नहीं होता है, इसलिए इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी।
बिल्कुल सही, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मैंने बताया पानी से किया जाता है तो वो H2O में H2 सेपरेट करते हैं, उसमें जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वो बिजली भी हम ग्रीन तरीके से, मतलब ये सोलर नहीं तो विंड ऐसा तरीके से अगर हम प्रोड्यूस करेंगे वो बिजली भी, तो हम पूरा तरह से कार्बन को सेपरेट करके ओनली हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। पहले मैंने जो मीथेन से प्रोडक्शन का बात किया था उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, वो भी हाइड्रोजन सेम ही है बट वो ग्रे है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड।
और आपने पीरियोडिक चार्ज की भी बात की थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है पीरियोडिक चार्ट का, तो क्या आने वाले वक्त में ये जो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक चार्ट का हाइड्रोजन, ये हमें काफी कुछ देने वाला है पर्यावरण के ख्याल से, और इकोनॉमी के फ्रंट पर भी, क्योंकि क्या इसके आने से जो कच्चे तेल का आयात हम क्रूड का करते हैं उसमें कुछ कमी आएगी?
देखिए ऐसा है, हम लोग अभी तो एनर्जी मतलब जो कुछ भी शक्ति जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका तो मेजर कंपोनेंट है कोयला, नहीं तो ऑयल, नहीं तो गैस, इसको रिप्लेस करना ही है क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग देख ही रहे हैं, हम देख रहे हैं जो तापमान है वो तो बढ़ ही रहा है, उसको तो हमको कैसे भी करके कंट्रोल करना है, तो कोई ना कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना है, जो अल्टरनेट सॉल्यूशन हमको हाइड्रोजन में दिख रहा है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के तरफ जा रहा है एंड हाइड्रोजन इज प्रॉमिसिंग इन दैट, मतलब उसमें वो क्षमता है कि यूजिंग हाइड्रोजन हम ग्रीन बन सकते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग आवर ग्लोबल वार्मिंग इज पोटेंशियल।
इसमें अभी आपसे अगर हम पूछें कि भारत ने क्या क्या इनोवेशन किया है, हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कितने समय के बाद एक आम आदमी भी इसको इस्तेमाल करने लगा ग्रीन हाइड्रोजन को?
भारत ट्राई कर रहा है कि आगे बढ़े, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का हब्स बनाए। हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है कि क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी नेचुरल गैस नहीं तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है कि वो है अंदर और हम उसको बाहर निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला भी ऐसा ही है अंदर हम बाहर निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम स्टोरेज करने का जरूरत ज्यादा है, तो स्टोरेज मतलब उसको रखना है कहीं पे भी, तो स्टोरेज सिस्टम बढ़ाने के लिए भारत देश में हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था कि 19,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इसमें टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, भारत इसमें जाने के लिए देख रहा है। अभी कोयला पावर जनरेशन में भी यूज होता है एंड कोयला तो स्टील प्रोडक्शन, आयरन ओर को प्रोसेसिंग में भी आप सब लोग जानते ही होंगे, उसमें भी कोयला यूज करते हैं, वहाँ पर भी हाइड्रोजन के थ्रू प्रोसेस रिफॉर्म करने के लिए भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि स्टील प्रोडक्शन जो है वो भी हाइड्रोजन के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए
भारत सरकार लगातार ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसमें कई सारे नवाचार भी किए जा रहे हैं, यही वजह है कि दुनिया के दूसरे देश भारत की काफी प्रशंसा कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति के लिए। और यशस्वी जी आपने अभी बताया कि जैसे हाइड्रोजन को आप पैदा करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को ये कहीं धरती के अंदर नहीं है जहां से निकाला और इस्तेमाल किया, तो इसको स्टोर करने की जरूरत होती है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि बिजली को भी हम पैदा करते हैं और बिजली को भी स्टोर करने की जरूरत होती है, तो बिजली तो सिर्फ बैटरीज में स्टोर की जाती है, ग्रीन हाइड्रोजन को आप कहाँ स्टोर करेंगे?
ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हमको उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसको हाई प्रेशर स्टोरेज सेल्स बनाना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन स्टोरेज यूनिट हब बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन स्टोरेज हब बनाएंगे, इसमें हाई प्रेशर स्टोरेज, लिक्विफाई इसलिए नहीं करते, लाइक नेचुरल गैस में लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड मतलब जो कि लिक्विड फॉर्म में है और कंप्रेस नेचुरल गैस इज नॉट इन लिक्विड फॉर्म बट इट इज कंप्रेस्ड, इन द सेम वे हाइड्रोजन को भी हम लिक्विड कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी लग जाएगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए कंप्रेस्ड स्टेट में हाइड्रोजन को स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज हब्स बना रहे हैं हम लोग भारत।
अभी दुनिया के और कौन से ऐसे देश हैं जो हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं? हमने कहीं खबर पढ़ी थी कि चीन इस मामले में काफी काम कर चुका है।
चीन तो आगे बढ़ चुका है हाइड्रोजन प्रोडक्शन में और बहुत ज्यादा काम और रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहा है यूरोप में, अभी मैं भी देख रहा हूँ उसको लेके, नेदरलैंड्स में हॉस्पिटल बना है जो कि पूरा सोलर पावर बेस्ड हॉस्पिटल है, बट उसमें वो जो सुबह सूरज है उसके वजह से जो पावर आया वो अगर ज्यादा हो गया, वो ज्यादा पावर से वो लोग पानी को अपने इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेंगे, वो भी उधर स्टोर करेंगे, वो स्टोर्ड हाइड्रोजन को फिर वापस यूज करके वो हॉस्पिटल को रन करेंगे। अभी मैं जैसे बता रहा था पानी H2O में H2O को सेपरेट कर दिया तो वो ऑक्सीजन आया, तो हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन का भी काम आएगा, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा स्पेन में भी हो रहा है, स्वीडन में भी हो रहा है, स्वीडन में भी इनफैक्ट वो स्टील प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है।
इसको पैदा करने में क्या कुछ चैलेंजेस भी आप देख रहे हैं?
प्रोडक्शन का चैलेंजेस तो यही है कि मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली यूज करेंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए, अगर सोचे हम रिन्यूएबल पावर यूज करेंगे तो रिन्यूएबल पावर मतलब ये सोलार विंड ये सब है, तो सोलार का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, अगर विंड प्लांट भी लगाया विंड प्लांट का भी प्रॉब्लम है कि विंड जो ब्लेड है वो बर्ड्स को अफेक्ट कर सकता है, तो ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है। एक और मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें अभी सी वाटर यूज नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए क्योंकि उसमें नमक का कंटेंट ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, बट प्योर वाटर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध पानी भी बिजली का कंडक्शन नहीं करेगा, तो थोड़ा सा नमक होना चाहिए, तो लिटिल बिट लेस सॉल्टर वर्जन को यूज करेंगे तो इज एप्लीकेबल, तो इतना ऐसा यू नो कॉम्पोजिशन फ्यूचर में हमको नहीं मिलेगा पानी तो हमको उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट IIT मद्रास का रिसर्च रिसेंटली हुआ था जिसमें वो लोग ट्राई कर रहे थे कि साल्ट वाटर जो समुद्र का पानी है उससे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। ये रिसर्च कर लिया IIT मद्रास ने ही, बाकी देशों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी ये सब भी कर रहे हैं।
जी, जब तक आप समंदर के पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए पानी कम पड़ सकता है। अगर आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डैम के पानी का और रिवर के पानी का इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही ये भी देखना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने में कॉस्टिंग इतनी ज्यादा न हो जाए कि फिर ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महंगा हो जाए।
कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए वो शुद्ध पानी का ऐसे ही स्कैर्सिटी हो रहा है धीरे धीरे हमारा देश में भी, और समुद्र का पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसके वजह से कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है। दूसरा, ये सोलर और विंड पावर का अभी तो कॉस्ट कम हुआ है, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर है, बट वो अभी भी हम उस रास्ते में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट हाई है।
कई जगह अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ बसें भी चलाई जा रही हैं और कुछ और पायलट प्रोजेक्ट भी हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन शायद इसकी कीमत जो है ग्रीन हाइड्रोजन की 450 450 रुपीज पर केजी है, तो इससे कितना माइलेज हम ले सकते हैं व्हीकल को अगर चला रहे हैं तो?
ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे होता है, हाइड्रोजन एज इट इज वो बर्न नहीं करते हम लोग, अगर गाड़ी में है वो पेट्रोल जैसा काम नहीं करता है वो। हाइड्रोजन का एक फ्यूल सेल करके एक होता है, वो फ्यूल सेल को हम इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूल सेल में क्या होता है, फिर से बैटरी हो गया, वो एक तरह का बैटरी है, डायरेक्ट बैटरी नहीं है, उसमें नॉर्मल बैटरी जैसा एनोड कैथोड है। ये एनोड की तरफ जब हम हाइड्रोजन रिलीज करेंगे उसमें थोड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस है, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उससे चलता है ये गाड़ी। अभी अगर हम नॉर्मल कार, एक छोटा सा कार का फ्यूल सेल ले लेंगे, उसका 6000 आर्स टू 10000 आर्स का घंटा का चलने का सेल का पावर है, मतलब अभी 6000 आर्स और 10000 आर्स लाइक उसका कन्वर्शन अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years 10 years तक आता है।
अभी आप वर्ल्ड लेवल पर क्या देख रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य कैसा है?
जैसे मैंने पहले बताया, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो है जो धरती का तापमान का बढ़ावा कर रहे हैं, इसको हम कैसे भी करके कम करना ही पड़ेगा। हमारा 2015 में एक मीटिंग हुआ पेरिस में कॉल्ड पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें सारा देश साइन किया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, तो कम करने और हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट कैनॉट बी मेट विद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से सारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते, तो हमको एक अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए, वो अल्टरनेटिव फ्यूल है हाइड्रोजन, और इस पे रिसर्च एज वेल एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सही तौर पे, मतलब आम आदमी भी यूज करने लायक जैसा बनाने के लिए रिसर्च भी हो रहा है, एप्लीकेशन भी किया जा रहा है।
बिल्कुल, अगर हम पर्यावरण की बात करें यशस्वी जी, तो सबसे ज्यादा जो गैस सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है वो है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन उससे काफी कम है, हाइड्रोजन और भी कम है, लेकिन अगर मानव शरीर की बात करें, इंसानों की बात करें, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है उनमें 61% के आसपास और हाइड्रोजन होता है 10% के आसपास। पर्यावरण में कितना हाइड्रोजन है, और क्या वो सीधे हाइड्रोजन को भी हम ग्रीन हाइड्रोजन में बना सकते हैं बिना पानी के?
नहीं, वो पर्यावरण में जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप सही बोले कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 आसपास है, ऑक्सीजन का 12 है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4 है ऐसा कुछ है, बट उसमें हाइड्रोजन बहुत कम है, हम पकड़ के उसको निकाल नहीं सकते, वो थोड़ा कठिन है।
बिल्कुल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए ऊर्जा विश्लेषक यशस्वी तुर्लापट्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।
अभी आप सुन रहे थे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, नवाचार और विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक यशस्वी तुर्लापट्टी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।